शांति। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से हम करें राष्ट्र आराधन, अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र आराधन, अपने हस्ते शैशव से अपने खिलते यौवन से प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं जो माँ के सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं, हमने अभिषेक किया था जननी का हरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन देकर हम करे पुनः संस्थापन, हम करे राष्ट्र आराधन। कवि लिखता है कि हम इस राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं, किस राष्ट्र की आराधना, जिसे हमने मां कहा है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके निवासियों ने उसे मां कहा, पर इस मां के साथ क्या हुआ, इसकी गाथा इस गीत में है। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, इस भारत के साथ ऐसी घटनाएं हुई है जो मां के सेवा पथ पर आई बनकर विपदाए, हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, शत्रु के रक्त से हमने कभी क्या किया था इसका अभिषेक किया था, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, शत्रुओं के शीश से कभी इस मां का हमने श्रृंगार किया था, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, हमने ही कभी इस मां को क्या दिया था, बहुत ऊंचा सिंहासन दिया था, मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। किसका शासन करता था भारत, विश्व गुरु है भारत। अब काल चक्र की गति से क्या हो गया है, वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन देकर हम करे पुनः संस्थापन, हम करे राष्ट्र आराधन। राइज एंड फॉल आज की मुरली में है, तुम कहां बैठे हो, तुम बैठे हो कहां पर, किस पाठशाला में बैठे हो, इस पाठशाला में बाप तुमको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, भारत का राइज और भारत का फॉल, भारत का उत्थान और भारत का पतन कैसे हुआ, यही भारत था जहां पर विश्व महाराजा विश्व महारानी थे, वही सतयुग में और वही त्रेता में राजा और रानी थे, ये राइज और फॉल कैसे हुआ ये तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन। ये भारत गिरा है, भारत का धर्म गिरा है, भारत की संस्कृति गिरी है, भारत का पतन हुआ है, सारा खेल ही भारत पर बना हुआ है, भारत का गिरना अर्थात विश्व का गिरना, भारत का उठना अर्थात विश्व का उठना, भारत की उन्नति अर्थात विश्व की उन्नति, भारत की अवनति अर्थात विश्व की अवनति। अपने हस्ते शैशव से अपने खिलते यौवन से प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन। इसके लिए अभी क्या करना है हमें, अपने हस्ते शैशव से अपने बचपनों से बचपन हंसते हुए बचपन से अपने खिलते हुए यौवन से और प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हमें राष्ट्र का अर्चन करना है। अपने अतीत को पढ़कर अतीत को फिर पढ़ना है, जबकि हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल तुम जानते हो और कोई नहीं, इसका इतिहास उलटकर अब इसका इतिहास ही तुमको उलटना है, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं। बाबा ने कहा ये भारत क्यों गिरा, आज की मुरली किसने गिराया इस भारत को, रावण ने। किसने पतित बनाया इस भारत को, रावण ने। रावण अर्थात विकार, पहली पहली हिंसा है काम, आज की मुरली पहली पहली हिंसा है, ये सबसे पहली हिंसा। सतयुग और सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की सीमा रेखा क्या है? एक ही है, ये पावन है, ये पतित है। यहां रावण नहीं, यहां रावण है, यहां विकार है, यहां विकार नहीं, वो निर्विकारी थे। तो जब निर्विकारी चेतना की अवस्था है वो राइज है, और जब वो गिर जाती है तब वो फॉल है। टेस्ट ऑफ लस्ट इज फॉल ऑफ मैन, इंग्लिश में कहा जाता है। यहां उसने काम को चखा और गिरा, टेस्ट ऑफ लस्ट एंड फॉल ऑफ मैन, गिर गया यहां से व्यक्ति। तो ये तो बात थी भारत की, पर इस ब्राह्मण जीवन में भी राइज और फॉल है, और हमारा राइज एंड फॉल बहुत सूक्ष्म है। भारत का राइज एंड फॉल दिखाई दे रहा है। भारत कैसा था 100 वर्ष पहले ही कैसा था, 200 वर्ष पहले ही कैसा था भारत। एक एक धर्म आया, धर्म का उत्थान हुआ, धर्म का पतन हुआ। हिंदू धर्म उठा, वैदिक धर्म उठा, वैदिक धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, बौद्ध धर्म का पतन हुआ। संन्यास धर्म आया, उठा, फिर पतन हुआ। भक्ति आई, भक्ति का उत्थान हुआ और भक्ति का फिर पतन हुआ। नैतिकता का उत्थान हुआ, नैतिकता का पतन हुआ। 200 वर्ष पहले व्यक्ति इतने अनैतिक नहीं थे जितने अब है। तो अब हमें क्या करना है? इस भारत को उठाना है, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन। तो आज हम चर्चा करेंगे राइज और फॉल की।
हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन,
हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, करे राष्ट्र आराधन, हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन,
कर अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलट कर अपना भवितव्य समझ कर हम करें राष्ट्र का चिंतन हम करें राष्ट्र का चिंतन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन करें राष्ट्र आराधन
है या तो हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं
जो मां की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं
हमने अभिषेक किया था जननी का परिशोणित थे
हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से
हमने ही उसे दिया था
सांस्कृतिक उच्च सिंहासन मानस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन धन से मन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन
निरंतर ये याद रहे कि हमें क्या करना है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना। कैसे बनाएंगे? अपना तन मन धन देकर इस भारत को फिर से उसी उच्च सिंहासन पर बिठाना है। आईएएस में, आईएएस की एक एग्जाम में एक ऐसे आया था और ऐसे का टॉपिक था, द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। इतिहास से हमने एक ही सबक सीखा है और वो ये सीखा है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा है। इतिहास से सीखना है, वो सारी घटनाएं जो हुई है अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलट कर अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। जो जलती घटनाएं हुई है, कैसे काल चक्र घुमा है, तो एक तो है इतिहास को पढ़ना, एक है इतिहास बनाना, एक है इतिहास पढ़ना और दूसरी एक चीज है अपने ही जीवन के इतिहास को पढ़ना। एक तो पतन है, उत्थान है भारत का, एक है हमारे पुरुषार्थी जीवन का। जब से बाबा के बने तब से आज तक कहां उत्थान हुआ कहां पतन हुआ, कहां उत्थान हुआ कहां पतन हुआ और क्यों हुआ, वो कौन सी जलती घटनाएं आ गई, वो कौन सी विपदाएं आ गई, अपना इतिहास उलट कर पढ़कर कर्तव्य समझकर अब अपने आप को अर्पित करना है इस कार्य के लिए। अपने आप को उठाना अर्थात भारत को उठाना, और भारत को उठाना अर्थात विश्व को उठाना। तो विश्व के कल्याण का कार्य किसको उठाने से चालू हो रहा है? स्वयं को। और वो अवसर केवल अब है। क्या ऐसा हमको लगता है कि ये अवसर है, बस ये अवसर चूक गया तो गया? एक व्यक्ति था महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, उस गांव में महात्मा बुद्ध 30 बार आए और हर बार जब बुद्ध आए तो उसको लगा मुझे मिलने जाना है, पर हर बार कुछ ना कुछ हो गया। कभी पत्नी बीमार पड़ गई, पत्नियां बीमार पड़ती रहती है, कब पड़ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। कभी कोई मेहमान आ गया, कभी दुकान पर है, अभी दुकान बंद ही कर रहा है तो कोई ग्राहक आ गया, और उसी समय बुद्ध आए थे गांव में। हमेशा लगा कि मुझे बुद्ध को मिलना है, ऐसी महान हस्ती, ऐसी जागृत चेतना, मुझे एक बार तो मिलना ही चाहिए। परंतु भगवान हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता नहीं है, बाद में सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद में भगवान, खाना पीना हो गया, ब्रह्मा भोजन सब कुछ पूरा हो गया, उसके बाद में लास्ट में अगर टाइम मिला तो वो करेंगे। व्यक्ति जब घूमने फिरने जाता है तो उसके अंदर के सारे संस्कार बाहर निकलते हैं। व्यक्ति को देखना है वो क्या है तो उसकी स्टडी तब करो जब वो पिकनिक पर जाता है, सारे लौकिक के संस्कार बाहर आ जाते हैं। किस तरह बहनें भाइयों से बात करती और भाई बहनों से बात करते, सब निकल के आता है उधर। तो 30 बार महात्मा बुद्ध उस गांव में आए, पर हर बार उसे लगा कि ये थोड़ा इतना महत्वपूर्ण, बुद्ध तो आते रहते हैं। और फिर एक बार जब बुद्ध ने ये घोषणा कर दी, आज मेरा अंतिम दिन है, अब मैं जाने वाला हूं, तब उसको जागृति आई, अरे मैं तो मिला ही नहीं, मुझे मिलना है। जब बुद्ध ने कह दिया कि बस अब जीवन नैया तट पर आकर खड़ी है, निकलना है, शिष्यों से पूछा और कुछ किसको पूछना है, बताना है, उन्होंने कहा आपने जितना बताया उतना तो काफी, उतना ही तो नहीं समझा, पूरा जीवन लग जाएगा उतना समझने में जितना आपने सिखाया है आज तक, समझाया है आज तक, और बस बुद्ध विदा लेने वाले हैं। और वो व्यक्ति ऐसा भाग निकलता है, ऐसा भाग के आता है, ऐसा भाग के आता है कि बस बुद्ध बस अब जाने ही वाले, एकदम उनको लगता है। फिर भी देखते और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना नहीं है। 40 साल से सब घूम रहे साथ में, झुंड का झुंड सन्यासियों का, उनके साथ सारे प्रश्न उत्तर तो नहीं मिले परंतु पूछना कुछ नहीं है। और बस बुद्ध जाने ही वाले कि तब वो व्यक्ति भाग के आता है तो दिखाया है बुद्ध अपने आप को, रोक लेते उस एक व्यक्ति के लिए। वो चूक तो गया था 30 बार या 30 वर्ष या 30 जन्म भी, पर मैं क्यों चूकूं उससे एक क्षण के लिए बात करके फिर शरीर छोड़ते। क्या हमको ऐसा लगता है इतने जन्मों के बाद, 5000 साल के बाद ये एक छोटा सा समय जब भगवान आया है और ज्ञान सुना रहा है, और वो ना सुन के कुछ और सुन रहे हम या सुना रहे, ऐसे सुनाने वालों को क्या कहो, सुनना ही नहीं, शैतानी संघ है बाबा ने कहा ये आज की मुरली, सुनो उनका संग, उनको करो, उनका करो जो मीठी मीठी बातें तुम्हारे कान में सिखाते हैं सुनाते हैं, केवल उनका संग करो। तो ये छोटा सा समय उसमें भी अगर कुसंग में चला गया, ये छोटा सा समय जिसमें भी पहली पहली हिंसा काम में चला गया तो क्या कहेंगे, महामूर्ख अगर यहां बन गए तो क्या कहेंगे। छोटा सा समय, इस छोटे से समय में पवित्र बनना है, इस छोटे से समय में भारत का उत्थान करना है, इस छोटे से समय में अपना उत्थान करना है, क्योंकि आत्मा गिर गई है। किस में गिरी है अब उसकी चर्चा हम करेंगे, कम से कम 16 बातें जिसमें गिरी भी है, उत्थान भी हुआ है तो पतन भी हुआ है। हमारा ब्राह्मण जीवन का ग्राफ कई कईयों का नीचे भी है, फिर उठते हैं, फिर इधर, फिर प्लेट्यू, कईयों का पता नहीं, यहां तो उठे थे पहले, अब कितने साल हो गए एक ही चल रहा है, ना नीचे जाते ना ऊपर जाते, और कोई कोई जो है 1-2 कदम ऊपर जाते, 4 कदम नीचे जाते, फिर 10 कदम ऊपर जाते तो 20 कदम नीचे जाते, जब से आए हैं तब से जिग-जैग कर रहे हैं, जिग-जैगिंग पता है ना, साइकोलॉजी में जिग-जैगिंग होता है। एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ चलता हुआ गया 5 किलोमीटर, पर कुत्ता 10 किलोमीटर चला, कैसे? व्यक्ति कुत्ते के साथ गया घूमने के लिए, पर व्यक्ति 5 किलोमीटर चला पर कुत्ता 10, क्योंकि कुत्ते को हर गली में जाके भौंकना है, कुत्ते को हर ढक्कन के पीछे क्या है वो देखना है, हर डस्टबिन में जाके कुछ करना है, कुत्ते को हर आने वाली कार का पीछा करना है। कभी भी गाड़ी लेकर जाओ तो कुत्ते पीछे आते हैं। एक लेखक ने लिखा है उस दिन क्या होगा जिस दिन ये ओवरटेक कर लेंगे उसको, कार को या बाइक को, क्योंकि भागते हैं पीछे और फिर रुक जाते हैं। उस दिन क्या होगा? दिन देवी तो जिगजैगिंग अर्थात गलियों में भटकना, इसलिए 10 किलोमीटर चला है कुत्ता, व्यक्ति 5 ही किलोमीटर चला, क्योंकि हर गली में घुस घुस के देखता है क्या है उधर, हर गाड़ी के पीछे भागता है और वापस आता है। यही भी हमने भी यही किया है, इधर ताक झोंक, नाक ताक झोंक करना, नोक झोंक करना, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर जाके देखू, उधर क्या देखू। अगर किसी के बारे में कोई परचिंतन की बात सुनी, वहीं कथा समाप्त नहीं होती है, पुराण तो यहां से चालू होता है, उतने से संतुष्टि नहीं होती। अगर कुछ बच गए हुई एक हाथ पॉइंट तो वो दूसरों से कंफर्म की जाती है, वही टॉपिक को फिर से चर्चा की जाती है। एक ने सब कुछ बता दिया कि ये कुमार था भाई, उसकी शादी हो गई, अच्छा उस कुमार कैसे, डिटेल बताओ पूरा। फिर एक ने पूरा बता दिया, फिर दूसरे के पास जाएंगे ताकि कोई पॉइंट, एक भी पॉइंट मिस ना हो, पूरी जानकारी चाहिए हमको। इसको कहते हैं जिगजैगिंग, इसी में तो भटक गई है आत्मा। राइज, सबसे पहला है याद, रिमेम्बरेंस। जब से ज्ञान में आए तब से अब तक के अगर देखो हम, तो क्या याद एकरस थी? आज की मुरली में अपने आप की जांच करो, कितना बाप को याद किया है? आज की मुरली में प्रश्न है, अपने आप को जांच करो, कितना बाप को याद किया। हम अपनी याद की यात्रा, यात्रा है ना, तो अपने जीवन की यात्रा देखो, ब्राह्मण जीवन की, यहां जन्म लिया और अभी यहां पहुंचे। इस यात्रा में शुरुआत से अब तक कैसी रही याद? एकरस या कभी कई दिन बहुत अच्छी अच्छी, और कभी तो एकदम ही नीचे चली गई, कभी तो बिल्कुल थी ही नहीं, खत्म। याद का भी उत्थान हुआ है और याद का भी पतन हुआ है। जब हमारी याद का निरंतर उत्थान होगा, तब इस भारत का उत्थान होगा, तब विश्व का उत्थान होगा, क्योंकि याद से बड़ी और कोई शक्ति नहीं दुनिया में। यह सबसे सबसे शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा याद, क्योंकि किसी को तो परिचय ही नहीं है याद का। सबसे पहला तो इसको देखना है कि हमारी याद कौन सी चीज नष्ट करती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हो जाती है तो योग खत्म हो जाता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जैसे ही उसके बारे में सोचने लगते हैं उस दिन का अमृत वेला खलास खत्म, योग ही डिस्टर्ब हो जाता है, जा ही नहीं पाते हो, पर आत्मा अभिमानी बन ही नहीं पाते, तो वो पतन हुआ ना। तो सूक्ष्म पतन तो यही हो रहा है, वो पतन छोड़ दो, ये वाला पतन है, याद की यात्रा का उत्थान और याद की यात्रा का पतन, ये सबसे पहला। इसके लिए योग के चार्ट को बढ़ाना है, स्थूल से चालू करके सूक्ष्म में जाना है, कुछ ऐसे नियम बना के रखने हैं कि जिसमें हम जबरदस्ती बैठे, ताकि धीरे धीरे ये शरीर और मन दोनों को प्रैक्टिस हो बैठकर याद करने की। तब तक ये काम नहीं होगा, क्योंकि मन का तो स्वभाव है भागना, उछल कूद करना, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा, उसको रोक देना है सबसे पहला ये। दूसरा है रिलीजन, पवित्रता का धर्म। हर एक अपने ब्रह्मचर्य के चार्ट को चेक करे, जब से ज्ञान में आए तब से प्यूरिटी कैसी रही, वो कौन से कारण थे जिससे प्यूरिटी खंडित हुई, और प्यूरिटी खंडन का सबसे बड़े कारण की चर्चा कल की मुरली में बाबा ने की थी, कौन सी बाइस्कोप सिनेमा ने क्या किया है। सिनेमा के फायदे बहुत है, बहुत सारे फायदे हैं, पर इस समाज में जो बुराई फैली है उसका भी एक मूल कारण सिनेमा ही है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी फिल्में खराब है, कुछ कुछ फिल्में ऐसी भी हो सकती है जिसमें राष्ट्र प्रेम जागता है, मातृत्व प्रेम जागता है, भक्ति जागती है, ईश्वर प्रेम जागता है, समर्पण के भाव जागते हैं। परंतु वर्तमान समय जो फिल्में हैं उसमें अश्लीलता, नग्नता, उसमें विकार, बुराई, लड़ाई झगड़े, आइडियाज कहां से आती है युवकों को? देखकर, लूटपाट, भ्रष्टाचार, करप्शन, टेररिज्म, ये सब का कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म कारण सिनेमा बना है। अगर चाहे तो जितने फिल्म बनाने वाले हैं उसको ठीक कर सकते हैं, परंतु दर्शकों की थाली पर जो परोसा जा रहा है उसमें अश्लीलता ही है। और वो कहते हैं पब्लिक को भी यही चाहिए, इसलिए तो बाबा कहते हैं देश का पतन हुआ है, विश्व का ही पतन हुआ है। ऐसे कुछ कुछ देश है जहां पर ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबंध है, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ा कारण बना है। यहां तक कि ब्राह्मण समाज में भी नहीं तो किसी को क्या पता है ये सब चीजों के बारे में, कहां से सीखा है सबने, कहां से पता चला है, वहीं से पता चला है। कॉलेज के बच्चे बच्चियां उनके भी अफेयर्स और ये सब की चर्चा है और चित्र और मूवीज बनी हुई है, तो क्या सीखेंगे, चरित्र कहां से सीखेंगे? पहले गुरुकुल होते थे, अब तो गुरुकुल है ही नहीं। प्यूरिटी, अगर बाबा कह रहा है सिनेमा सिन की मां है, तो ब्राह्मणों को चाहिए कि संपूर्ण सिनेमा पर हम अपनी आंखों को प्रतिबंध लगा दें, आंखों पर पता ही नहीं करना है उसमें क्या है, क्योंकि उसमें जो कुछ है कहीं ना तथा कथित धार्मिक सीरियल, तथा कथित धार्मिक फिल्में, जो धार्मिक फिल्म है वो जो धार्मिक फिल्म कर रहा है, वो जो एक्टर है उसका चरित्र क्या है, किस भावना से कर रहा है वो? विश्व कल्याण की भावना से किस भावना से कर रहा है? वो कहते हैं ना हम रिलीजियस मूवीज देखते हैं, पर उसमें जो भी मूवीज होते हैं उसमें नृत्य इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो भी मूवीज होते हैं उसमें पोशाक, जो भी मूवीज होती है उसमें कॉमेडी सीन्स, उसमें वायलेंट सीन्स, उसमें नग्नता, अर्धनग्नता, ये सब इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो कोई भी सीरियल हो, कैसा भी हो, कितना भी धार्मिक क्यों ना हो। और यदि कोई व्यक्ति 3 घंटा कोई फिल्म देखता है और 3 घंटे में सब कुछ ठीक है, 5 मिनट गड़बड़ है, याद क्या रहेगा उसको? वो ही याद रहेगा, बाकी सब भूल जाता है। उसमें त्याग, समर्पण, बलिदान, हीरो ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, उसको याद रहता है क्या? हीरो की प्रेम कहानी उसे याद रहती है, हीरो का त्याग, बलिदान, तपस्या याद नहीं रहती उसे। यहीं से सीखा है। अगर यही जड़ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी को कहो ये किताब पढ़ो, वो कहेगा ये किताब मैंने पढ़ी थी 10 साल पहले, क्या था इसमें बताओ, वो याद नहीं। अच्छा ये मूवी 10 साल पहले देखी थी, इसका तो एक एक डायलॉग याद है, क्यों? 3D है, 3D। बुक में खाली शब्द है, 2D है, ये 3D है, उसमें व्यक्ति चल रहा है, देख रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक डाला जाता है, सॉन्ग्स किस तरह के सॉन्ग्स डाले जाते हैं, सॉन्ग्स कैसे हैं, म्यूजिक कैसे है, दृश्य कैसे है, पोशाक कैसे है, कॉमेडी कैसी है, वायलेंस सीन्स कैसे है, कितनी सारी चीजें है उसमें, ये सब पतन का कारण बना है। अगर चाहे डायरेक्टर तो ये सब ठीक भी रख सकता है और उससे बहुत श्रेष्ठ प्रेरणाएं दे सकता है। पहले के जमाने में कैसी फिल्में थी, राजा हरिश्चंद्र, अभी ऐसी कोई फिल्म अगर आ जाए फ्लॉप क्योंकि चारित्रिक पतन हुआ है समाज का, और उसका एक मुख्य कारण सिनेमा है। इसके लिए हम दुनिया को तो रोक नहीं सकते, पर अपने आप को तो रोक सकते। और इसका एक मुख्य साधन है ये YouTube। इसको ब्लैक होल से तुलना की गई है। ब्लैक होल ऐसी चीज है कि वहां कुछ भी जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सक कर लेता है। इसके लिए YouTube जो है ये बहुत बड़ी माया है। एक प्रश्न है कि एक सिद्धांत अपने बुद्धि में याद रखना, कुछ भी देखने जाओ तो जो लक्ष्य है उसको देखकर वापस आ जाओ। गो ऑनलाइन विद अ पर्पस। जो लक्ष्य है, मुरली में कोई शब्द आया उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनेट पे जाओ, ढूंढो अर्थ और वापस निकल के आ जाओ। बस बिना जस्ट कुछ काम ही नहीं है, चलो बैठते हैं 10 मिनट है बस चालू। कहां से चालू करेंगे और कहां एंड होगा उसका कोई खबर ही नहीं, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग नहीं कुछ भी नहीं उसका। सोने का टाइम था 9:30, ढूंढने गए, ढूंढते ढूंढते 12 बज जाए। अमृत वेला तो उठेंगे, प्रैक्टिस है, पर क्वालिटी नहीं रहेगी। इसके लिए अपने पतन और उत्थान को देखना है ब्रह्मचर्य की। और पतन का सबसे मुख्य कारण बना सिनेमा। कोई कहते हैं हम सिनेमा नहीं देखते, ट्रेलर देखते हैं। थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए ना, कौन सी रिलीज हो रही है। वो वैसा ही हो गया ना, वो जो कहानी सुनाई थी बंदर की, उपवास रखना है पर केला मैं हाथ में रख सकता हूं, छोटा सा बंदर का बच्चा पूछते हैं। मां कहती है पर सहमत से होता है निर्णय, सभी बंदर उपवास कर रहे हैं, सभी बंदरों ने निर्णय किया है कि हमारी लोग, हम कुछ तपस्या नहीं करते, मनुष्य समाज में हमारी बहुत ही लो इमेज है, हम लोग भी उपवास करेंगे। पर एक बंदर का बच्चा कहता है कि केला हाथ में रख सकते हैं ना, खाएंगे नहीं। कहते ठीक है। फिर उसके बाद में वो कहता क्या हम उसको छील के हाथ में रख सकते, खाना नहीं है। ठीक है रखो। फिर क्या हम उस केले को मुंह में रख सकते, खाएंगे नहीं पर केवल मुंह में रखेंगे। और धीरे अंदर कब चला गया पता ही नहीं चला। ये वैसा ही है। तो सबसे पहला है याद की यात्रा, दूसरा है धर्म रिलीजन, उसका बाद है आय इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट की भी यात्रा है, इंटरेस्ट का भी उत्थान और पतन हुआ। जब ज्ञान में आए थे तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट था, अब पता नहीं कहां चला गया इंटरेस्ट। एक दूसरी आदत जो नई तैयार हुई है लोगों को, क्लासेस सुनने की। क्लास इतना सुनते रहते क्लास ही सुनते रहते बस पूरा दिन, दूसरा कुछ करते ही नहीं, क्लास ही सुनते रहते बस। ये क्लास ही माया है उनके लिए। स्टॉप ऑल क्लासेस। अरे चिंतन करना है उसके ऊपर। सुनते रहते कोई भी चीज अगर वही करते रहो तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। अगर पूजा करना बहुत है, बस दिन रात पूजा ही करते रहे कोई, तो उसको करो भी तो जो उसमें कहा है, वो करना नहीं है बस सुनना है। कन रस, ये भक्ति मार्ग है। किसकी क्लास? उसकी क्लास। किसकी क्लास? इसकी क्लास। क्या सुन रहे हो? उसकी क्लास। इसकी, उसकी, इसकी, उसकी। अरे शिव बाबा कहां है? वो है ही नहीं उसकी। इंटरेस्ट तब जागृत होगा जब स्व का चिंतन होगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्लास सुन लो, सुन लिया, अब जहां वक्ता ने छोड़ा है वहां से अपना चिंतन आगे बढ़ाओ। अर्जुन की तरह, अर्जुन वहीं नहीं रुक गया जहां तक द्रोणाचार्य ने सिखाया, उसने और उसमें रिसर्च किया और आगे बढ़ा और उसको अपना बना दिया उस ज्ञान को। ये काम करना है। खाली सुनते रहना, सुनते, एक क्लास पूरी हुई अब क्या कर रहे हो? अब दूसरी क्लास। अब क्या कर रहे हो? अब तीसरी क्लास। एक के बाद एक। पहली हो गई क्या धारण करके? उसके बाद है वैराग, डिसइंटरेस्ट। वैराग की भी यात्रा है। हमारा वैराग एक रस नहीं है। कभी तो ऐसा वैराग आ जाता है, ऐसा वैराग। और एक नई विधि आपको आज बता रहे हैं वैराग की, जो आज रात में सबको करनी है। जब सोने जाओगे तो सोचना, ये मेरी मृत्यु शैया है, ये बेड मेरी मृत्यु हो रही है, मैं अपनी मृत्यु शैया पर, यह शेष शैया नहीं है, मृत्यु शैया है, और बस अभी एक मिनट के अंदर मैं मरने वाला हूं, लोग बस लकड़ी लेके खड़े ही है जलाने के लिए मुझे। अपने इर्द गिर्द देख लेना, जो बिता है वो अपने बेटों को देख ले, मां है अपने बेटों को देख ले, और कुमार ये मेरी मृत्यु शैया है। और अपने 24 घंटे को याद करो कि पिछले 24 घंटे में मैंने क्या किया, कैसे कर्म किए, तो मर रहा हूं मैं, बस ये मेरी अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है, ये मृत्यु शैया, ये बेड मतलब मृत्यु शैया पे लेट गया हूं मैं, ये मेरी चिता है जिस पर मैं सो रहा हूं, अब मर जाऊंगा। अगर यदा कदा बच गए तो सुबह सुबह सोचना नया जन्म हुआ है, एक दिन और मिल गया, धन्यवाद, पर यही सोचना मैं बच गया, और अभी मुझे जो कल 24 घंटे में गलतियां कर दी उसको ठीक करना है। किससे झगड़े करूं, झगड़े तो जीवन के मृत्यु के, कहां से झगड़े, यही सोचना रोज सोते समय बेड पर, ये क्या है मेरा डेथ बेड पायर। तो वैराग की भी हमारी ऐसी यात्रा है, वैराग निरंतर एक रस रहे, अंतर से निरंतर चिंतन करते रहना संसार के दुखों के बारे में, दोष दृष्टि होनी चाहिए संसार के प्रति, कितना विकारी, कितना पतित, कितना पापात्माओं की कल का, ठगों की दुनिया है ये, गटर है ये, इसमें क्या है रस, गटर को ग्लास में डाल के कोई पीता है क्या? पर व्यक्ति कर रहा है, वो कहने में कितना खराब लगता है पर वही तो कर रहा है, वही कर रहा है, ये शरीर क्या है, गटरी तो है, इसी को तो पीता है, भूख है, भूख किसकी, विष पीने की भूख। उसके बाद है सेवा, सेवा का उत्थान और पतन, क्या उमंगे थी सेवाओं की, अब देखो क्या हो गया, वही 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 करते रहते हैं, शिवरात्रि में पिछली बार जो किया इस बार भी वही करना है, कोई नवीनता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चिंतन ही क्यों करे, जो पहले किया था वैसा इस बार भी करो, सेम चिंतन सोच डेड, उसका भी उत्थान पतन हुआ है सेवा। उसके बाद में स्थिति, स्टेज, स्थिति स्टेज, हमारे स्टेज का उत्थान पतन एक ही दिन में देखो, सुबह सुबह क्या सतोप्रधान स्टेज सतयुग, रात को आते आते कलयुग में स्टेज के सतयुग त्रेता द्वापर वो अभ्यास सबको करना है आज से कि मैं कहां लेटा हूं, अपनी चिता पर, बस मर रहा हूं, अंतिम है स्टेज। उसके बाद में एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म अर्थात उत्साह का उत्थान, उत्थान और पतन, कभी कभी बहुत उत्साह रहता है, कभी कभी बिल्कुल उत्साह नहीं रहता है, क्यों क्यों ये उदासी छा जाती है, उदास रहते, आज की मुरली में है उदास, कल था इस मुरली में, पवित्र आत्मा में कभी उदास नहीं हो सकती, और भी मुरली में भी था कुछ, दो जगह था उदास, या उदास हो जाते तो कहां उत्साह ही नहीं है कुछ, डेड हो गए, मरे मरे से चल रहे, जी जी के मरते हैं और मर मर के जीते। उसके बाद में एफर्ट, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का उत्थान और पुरुषार्थ का पतन हुआ है, क्या पुरुषार्थ था शुरुआत में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा इतने बजे उठूंगा, पुरुषार्थ का प्रेशर, और अभी पुरुषार्थ हीन जीवन जी रहे, पुरुषार्थ कर करके पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, जिसको करना है करे, हम तो अपना ठीक है पुरुषार्थ को ग्रहण लगा हुआ है। तो ये हो गया आठ, फिर है अगला, फेथ की यात्रा, फेथ अर्थात निश्चय, निश्चय की भी इतना आसान नहीं है, निश्चय बड़ी बड़ी मुरलियां चली है निश्चय बुद्धि पर, कोई कहे मेरा 100% निश्चय है फिर बाबा की कैटेगरी सुनो तो पैर नीचे पीछे करने पड़ेंगे, कोई करेंगे मेरा बहुत प्यार है परमात्मा प्रेम की मुरली पढ़ो कदम पीछे, ये है परमात्मा प्रेम, हम जितना सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये निश्चय की यात्रा है, फेथ, फेथ कैसा है हमारा, एक क्रस फेथ है, और फेथ अर्थात केवल बाप, मेरा बाप, टीचर, सदगुरु, इतना ही फेथ नहीं है, उसके ज्ञान में फेथ, ड्रामा में फेथ, एक एक सीन में फेथ, जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ऐसा फेथ है, वो भी एक यात्रा है। उसके बाद है फूड, भोजन की उत्थान और पतन। लौकिक में जब थे कितना ध्यान रखते थे भोजन का, माता है आज का कल खा लेती थी, या नाश्ता तो था ही नहीं, सीधा भोजन, यहां आने के बाद में इतनी भरमार भोजन की, आते हैं तो ऐसे पतले पतले आते हैं मधुबन में, ऐसे पतले पतले, फिर धीरे धीरे खाते पीते घर के हो जाते। इनका फोटो देखना पुराना, कैसे आया था ये। इसका भी उत्थान और पतन हुआ है, ये योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है। ये बाबा की महावाक्य सुनाता हूं आपको, एक मिनट, बाबा के महावाक्य भोजन के लिए। मुरली, 27 फरवरी 2019, पेट बहुत नहीं खाता है, बस दो रोटी खाओ और कोई फूरना नहीं, इस शरीर में भी मोह निकाल दो, अव्यक्त साकार मुरली। 3 जनवरी 2019, रोटी टुकड़ा खाया ना खाया यह भागे सर्विस को, साकार मुरली। 31 दिसंबर 2018, पेट तो बस दो रोटी मांगता है, उससे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं, साहूकार लोग अच्छी रीति खाते फिर भी रोगी बनते, भील लोग देखो कितने मजबूत रहते और खाते क्या है, कितना कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए, दो रोटी मिले पेट भरा बस बाप को याद करो। उसके बाद में अव्यक्तवाणी, 7 मई 2018, बाकी पेट तो पाव रोटी ही मांगता है। ये सारे साकार महावाक्य है।
लेकिन कभी ऐसे भी कहा है, जो ज्ञान रत्न का दान नहीं करते उनका पेट पीट को लग
जाता है। वो संदर्भ अलग है, वो संदर्भ अलग है। तो इसकी भी यात्रा देखना है कि इसमें संयम बढ़ रहा है या भोग बढ़ रहा है। इंद्रिय जीत जो है वही माया जीत है, बहुत शक्तिशाली वाक्य है। जो इंद्रिय जीत नहीं है वो माया जीत भी नहीं है, कंफर्म समझ लो इसको। जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता है वो माया को कैसे जीतेंगे, और प्रकृति तो बहुत दूर की बात। उसके बाद में अगला, अवेकनिंग की यात्रा। जागरण कितने रहते हैं और बेहोश और बेहोश कितने रहते हैं, उत्थान पतन बेहोश और बेहोशी का हुआ है। उसके बाद में अमृत वेला, कितने अमृत वेला, कितनों के एक रस रहे, हर दिन सेम रहे, शक्तिशाली रहे। आज अमृत वेला ठीक है, दूसरे दिन नींद आ गई, अगले दिन व्यर्थ चला। अमृत वेले एक अभ्यास करना है, अभी ये दूसरा अभ्यास बता रहे, पहला अभ्यास बताया मृत्यु, दूसरा अभ्यास अमृत वेला डाउन कास्ट आईज, डाउन कास्ट आईज। डाउन कास्ट आईज मतलब पलके नीचे देखकर चलना, अमृत वेले में कौन कहां घूम रहा है ये देखना ही नहीं है, नहीं तो जहां आंखें जाती है वहां बुद्धि जाती है। अमृत वेले देखने का सन्यासियों का नियम है, वो नीचे देखकर चलते, नासिकाग्र दृष्टि, बस यहीं देखो नीचे, अमृत वेले ही देखते रहेंगे तो जिसको देखेंगे उसके ऊपर चिंतन चलेगा। वैसे तो डाउनकास्ट आईज सारे दिन के लिए भी है, रास्ते पर चलते हुए डाउनकास्ट आईज, कोई कोई बहुत सारे है, यज्ञ में भी है, ऐसे 2-3 भाई है, अगर जब भी हमने उनको देखा है नीचे आंखें, आंखें ऊपर नहीं है, और स्वभाव हो गया है, पर ये बहुत प्रैक्टिस से होगा। तो सभी अभ्यास करेंगे हमारे सहित, सब लोगों के लिए अभ्यास है, ये साधना है डाउनकास्ट आईज की। डाउनकास्ट आंखें नीचे देखकर, इधर उधर देखना है, जैसे यहां से वहां तक जा रहे, जिसको भी देखेंगे फिर ये दोनों यहां बैठ के क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, अमृत वेला ये यहां बैठा था कल, आज वहां क्यों बैठा, अंदर ही अंदर संकल्प तो चल रहा है, अभी तक वो आया क्यों नहीं, वो आई क्यों नहीं, ये मेरी जगह पे बैठी है, तुम्हारी जगह किसकी जगह, सब है भूमि गोपाल की। अमृत वेला कम से कम डाउन कास्ट आईज हो, आंखें ऊपर उठा रही, पल के ऊपर नहीं उठानी है, नीचे कुटिया में बैठे नीचे, जहां डाउन कास्ट आईज, साधना है ये, इसकी साधना करनी है। उसके बाद में प्रेम, प्रभु प्रेम, उत्थान और पतन हुआ है। एक कभी कभी इतना प्यार बाबा के लिए, और कभी कभी प्यार ही नहीं है। ऐसा बोलते नहीं है पर रहता नहीं है अंदर, प्यार कम हो गया इसलिए तो। और जब दूसरी चीजों से प्यार बढ़ेगा, आज की इस मुरली में भी है, किसी से भी मोहब्बत नहीं करो। आज ही है ना, आज ही है मोहब्बत शब्द। किसी से भी प्यार नहीं करो, किसी से भी मोहब्बत नहीं करो। प्रीत प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी बंद सब, ये सब ऊपर ऊपर के शब्द है, अंदर में काम है केवल और कुछ नहीं। तो लव, उसका भी उत्थान और पतन है। अब केवल उसका उत्थान, उसके बाद में लिबर्टी। लिबर्टी अर्थात मुक्ति, फ्रीडम। कितनी बार हम बंधन में बंधे हैं, कितनी बार हम बंधक बन गए, एक कैदी बन गए। एक ऐसे कैदी हम हैं जो अंधा है और उसे यही नहीं पता। जैसे जेलबर्ड, जेलबर्ड क्या होता है, मुरलियों में आता है। एक जो बार बार जाता है उसको पूछो, भाई तुम क्यों आते हो? कहते हो बाहर मन नहीं लगता है। कितनी बार जेल आए हो? 30 बार। क्यों आते हो? यहां से दोस्ती हो गई है, पुलिस वालों से दोस्ती, जेलर वालों से दोस्ती, यहां के मित्र संबंधी बन गए हैं अपने। बाहर क्या है? बाहर खर्चा कौन करेगा? रहने का घर नहीं है। यहां घर मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, पैसा तो नहीं, खाने का मिल जाता है। वहां कौन सुबह सुबह पानी की लाइन में लगेगा पानी भरने के लिए? कौन किराना और ये लाएगा राशन? यहां सब कुछ आराम से मिल जाता है, जीवन आराम से चल रहा है। इसके लिए तो बार बार आते रहते हैं जेल में, जेल बर्ड। और जो जेल में लंबा समय रखते हो उसको जेल ही अच्छा लगने लगता है। फिर वहां कंफर्ट जोन निर्माण होता है, ये है प्रिजन। हर आत्मा प्रिजन में है। मुक्ति की भी यात्रा है, कब हम मुक्त थे और कब बंधन में थे ये भी देखना है अपने आप को। और लास्ट एल, लर्निंग की यात्रा। जब नए नए आए थे तो कितना उमंग था, नया नया चीज सीखना है। अभी हमको सब पता है मुरली, कुछ भी सीखने का तो है ही नहीं उसमें, ऐसा हो गया है, कुछ नया दिख ही नहीं रहा है मुरली में। तो लर्निंग की भी यात्रा। और लास्ट है लाइन ऑफ मर्यादा, मर्यादाओं की लकीर। जब आए थे तो बहुत ध्यान था मर्यादाओं का, तब इतना आसान नहीं था। यज्ञ में कितने नियम थे, कड़े नियम थे। अभी जो कुछ कुछ फॉलो कर रहे पर बहुत ढीला हो गया है। तो ऐसी ये 16 बातें जिसमें उत्थान और पतन हुआ है। फॉल की 4, फॉल की 8 और राइज की 8। तो अपने आप को देखना है। ओम शांति।
हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन,
हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन,
निश्चल हो निर्मल मति से,
अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से,
श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन
हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, करे राष्ट्र आराधन।
अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन,
हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन
अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिंतन,
हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन।
या तो हमें युग युग की
चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं,
हमने अभिषेक किया था जननी का हरिशोणित से,
हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से,
हमने ही उसे दिया था
सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन,
हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन,
धन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन।